Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
वो बजाने वाले जो कलाकार होते हैं बड़े विलक्षण होते हैं। आप लोग अभी राम कथा सुन रहे हैं, पांचवें मंजिल में हमारे आदरणीय मनोज जी व्यास द्वारा कथा हो रही, उनके ये कलाकार भी बैठे हुए हैं और ऐसी विचित्र बंसी की कान से वो नाक से बजाते हैं। ये कलाकार की विशेषता है। तो कलाकार फिर किस बात के, ऐसे ही बंशी बज रही थी। एक उसमें साइंस के सज्जन बैठे थे, उनका भाई बंशी बहुत अच्छी बज रही। जब पूछा कि भाई ये कौन सा राग था, तो उसने बता दिया आशावरी। अच्छा, ये बंशी में से निकल रही? बोले हां, निकल तो रही बंशी में से। तो जब बंद हुआ, कथा बंद हुई, तो उसने सोचा वो बंशी वहीं रख के चला गया कलाकार। उसने कहा देखें इसमें आशावरी है कहां आखिर। तो बंशी को ले गया लेबोरेटरी में, उसको फाड़ फूड़ के देखा, सब अच्छी तरह से, उसमें कहीं आशावरी निकली नहीं। तो लौट के आया और उसे कहा क्यों तुम तो कह रहे थे इसमें आशा भरी, इसमें तो निकली नहीं, देखो हमने सब फाड़ फूड़ के अलग कर दी सब। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं निकलेगी ये, राम राम तुमने और बंसी बर्बाद कर दी। तो जो उसका कला का जानने वाला जानकार है वही वो समझ जाएगा। इसलिए ऊपर आप लोगों ने सुना था सदभी से विमानाम निगूढ़ाम, जो महापुरुष जिसको पहचानते हैं उसको मिलेगा, और जो जानता ही नहीं वो फाड़े फूड़े से थोड़ी मिलेगा। एक जगह संगीत हो रहा था, एक आदमी बड़ा गर्दन झुकाए, बहुत बड़ा आनंद आ रहा है, तो एक चारपाई का मिचुआ लेकर के चारपाई का पावा लिया और एक लकड़ी से रगड़ने लगा और बड़ा गर्दन हिलाए, बहुत अच्छा। तो कलाकारों ने देखा कि ये बाजा तो मैंने आज तक देखा नहीं कभी, ये कौन सा बाजा है। वो रगड़ रहा था बड़े मगन। तो बाद में जब कलाकार बंद हुए तो उनका कहा कि भाई साहब ये कौन सा बाजा है। बोले शामिल बाजा। कहा कि शामिल बाजा क्या? बोले बस शामिल बाजा। बोले भैया हम आपका थोड़ा देर सुनना चाहते हैं। बोले बताए ना शामिल बाजा, जब ये सब बजता है तब ये बजता है, अलग से ये नहीं बजता है, ये तो शामिल बाजा उसका नाम ही है। तो जैसे वैदिक लोग नहीं, एक व्यक्ति बोलता है ना तो स्वर सहित बोलता, दूसरी के साथ वो भी अपने शास्त्र से ऋषि पुरुष कहते जाते हैं। तो इस तरह से तो काम बनने का नहीं है। ये तो स्पष्ट कहते हैं ओ चमचम चमचम चमक रहा है हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में ही। उसके लिए बुद्धि ही, बुद्धि के प्रकाशक को ढूंढने के लिए बुद्धि सहायता दे सकती है। इसलिए भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति ते। अरे भाई, कोठी योगम कहते, कार योगम कहते, सो तो कुछ नहीं कहा, न कोठी योगम कहा न कार योगम कहा, बुद्धि योगम कहा। हम मैं बुद्धि योग देता हूं। और बोले क्यों देते हो? वो अपने मतलब के लिए, एन माम उपयान्ति ते, जिससे मुझे प्राप्त कर लें। तो मुझे प्राप्त करने कर लें इसलिए मैं बुद्धि योग देता हूं। उसी बुद्धि में, बुद्धि रूपी गुफा में वो विराजमान है, ये बात उपनिषदों में कई जगह बताई गई। अब जरा विचार करो थोड़ा इस पर कि बुद्धि रूपी गुफा में जब वो बैठा है तो क्या जैसे बंशी में आशावरी बैठी ऐसे बैठा है क्या, या वो शामिल बाजा में बैठा है? ये विचार करना पड़ेगा। ये लोग सोचते हैं, विचार करते, यदि यतयो विशंति, आगे दिया यति शब्द है, यतते इति यति, जो प्रयत्नशील हैं, जो प्रयत्न करते हैं इस ओर और चाहते हैं। पहली बात तो चाहना है ना, अगर जरूरत ही नहीं है उधर की ओर जाएगा ही नहीं तो फिर पाएगा कैसे भाई? पहले तो यत्न हो, और यत्न के साथ साथ जिज्ञासा जागृत हो कि भाई हमें वो चाहिए दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान, दिव्य अमृतत्व। पहली बात तो एक ये है कि हमें ये मालूम हो कि ऐसे अमरता उपलब्ध होती है, तो अमरता को हम चाहते हैं कि नहीं। प्रायः ये असुर लोग जितने भी होते हैं, असुर माने अश्व प्राणाः, तेषु रमते इति असुराः, माने देहेन्द्रीय प्राणों की वासना को पूरी करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो असुर होते हैं। असुर माने ये नहीं है कि बड़े भारी सींग लगे हों या दाढ़ें बड़ी बड़ी हों, ऐसा नहीं है। असुर माने है कि जो देहेन्द्रियादिषु रमते, जो देह और इंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, साथ ही सामान को पाने और जुटाने में लगे रहते हैं, उनको असुर बताया गया। इतना जीवन जीता, इतना जीवन चला जाता है किसमें कुछ मिल जाए और कुछ मिला हुआ सो बना रहे, एक शब्द में साथ ही सामान को पाने और बचाने में जुटा हुआ व्यक्ति। और जितने भी दैत्य हुए, असुर हुए, ऐसे उन्होंने सबने अमरता मांगी, कहा कि हम मरे ना। तो हम शब्द देह के लिए समझते हैं, देह कभी अमर नहीं हो सकती। हिरण कश्यप ने तो कोई कसर ही नहीं रखी, न भूमौ नाम्बरे चैव न नरे न मृगैरपि, न धरती में न आकाश में, न मनुष्य के द्वारा न पशु के द्वारा, ना भीतर ना बाहर। अरे बाबा, और तो और बताया किसी औजार से न मरे। जितना कुछ मांग सकता था उतना सब मांगता चला गया। ये अमरता किसकी चाहिए? देह की। तो देह तो प्यारे कभी अमर हो नहीं सकती। देह अमर अगर होती तो आप स्वयं 5-7 वर्ष बाद अनुभव कर चुके कि देह बदलती चली जा रही। अगर देह अमर होती तो ये बदलती क्यों? आप बचपन में थे तब दूसरी देह थी, फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए तैसे देह भी बदलती गई। तो जो बदल रही है, क्षण क्षण छूट रही है, घट रही है, मिट रही है, हट रही है, उसको अमर बना सकते हो क्या? ये असुर लोगों की बात है। असुर लोग प्रायः देह को ही अमर बनाने में लगे रहते हैं। जितने भी असुर हैं, हम काहू के मरैन मारे, बानर जात असुर दुईवारे। हम माने देह, हम किसी के मारे न मरे। और मनुष्य और बंदरों की तो बातें ही कोई नहीं। तो ये शरीर के लिए मांगा जाता है और शरीर कभी अमर हो नहीं सकता। क्यों? बोले वो ऐसी मैटर से बना हुआ है, उपादान है उसका गड़बड़ है। जो उपादान उसका मरणशील है, मर्त है, तो भला वो कैसे अमर हो सकता? देह तो, शरीर तो पेशाब से बनी ना, दो बूंद पेशाब से बनी। अब कितनी गंदी चीज से बनी है वो कैसे प्राप्त होवे, उसके लिए कहते त्यागे नहीं के, त्याग से। और त्याग माने ये नहीं है राजा सिखित ध्वज की तरह जैसे चोड़ाला को बताया, जैसे आप मलमूत्र त्याग देते हो रोज सवेरे और फिर कभी याद करते हो कि आज हमने इतना किलो मल त्याग दिया, याद नहीं करते उसको, तुच्छ समझते हो। बल्कि ना त्याग हो तो वैद्य डॉक्टर के पास जाते हो तुरंत, अरे आज बड़ी बेचैनी है। तो त्याग ना होने से बेचैनी हुई, ऐसे त्याग होने से आपको चैन मिला। और वो तुच्छ वस्तु समझना, त्याग का अर्थ केवल इतना ही है कि उसको महत्व बुद्धि न देना। तो जिस पदार्थ की आपको महत्व बुद्धि होती है उसका त्याग करते हो तब कर्तृत्व भी होता है, अभिमान भी होता है। तुरंत छपा देते हैं कि ये पत्थर लगा दो कमरा में, ये कमरा मैंने बनवाया, क्यों ये कर्तृत्व हो गया। अब यहां कह रहा है त्यागे नहीं के, कोई कोई बिरले महात्मा त्याग के द्वारा उस अमृतत्व को उपलब्ध करते हैं। वो त्याग माने न तो नंगे रहना है, जैसे एक संप्रदाय में साधु लोग नंगे ही रहते हैं और एक संप्रदाय में नागा बाबा कहलाते हैं। देखो तो ये पशु रहते हैं, गाय बैल कुत्ता बिल्ली ये सब रहते हैं, नंगे ही रहते हैं, तो इन्हें ज्ञान हो गया क्या? इसका कोई संबंध नहीं है। त्याग माने महत्व बुद्धि हटना, संसार के पदार्थों में महत्व बुद्धि न रहा है। जैसे मल त्याग कर दिया जाता उसमें कोई महत्व बुद्धि नहीं है, और बल्कि मुंह में थूक आ जाए, खकार आ जाए, नाक में गंदगी आ जाए, तो उसको त्यागने में ही चैन आती है। इसी तरह से यदि तुम्हारे जीवन में मिले हुए पदार्थ के प्रति त्याग भावना होगी तब तो त्याग है। इसलिए उन्होंने कहा कि त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। बिरले ही महात्मा ऐसे होते हैं जो त्याग के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं। क्यों भाई, ये क्यों कहा गया, जरा इस पर विचार करो थोड़ा। जैसे आप शरीर से और शरीर की गंदगी को, शरीर की पुरिया को देखते हो कि अरे भाई ये हाड़ मांस थूक खकार रसाश्रिक मांस मेदा मज्जा अस्थि शुक्र ये सब मिला करके सामान और ऊपर से पैकिंग कर दी गई, और पैकिंग आप जानते ही हो किसी की गोल्डन है किसी की आयरन है, पैकिंग ना पुरिया ही तो है। उस पुरिया को त्यागने में आपकी क्या महत्व बुद्धि है? अरे जिसमें यही माल भरा हुआ है ये जरा कभी सोचा विचार किया? तो जब देह की ये दशा है, अब इंद्रियों की ले लो, जरा इंद्रियों पर विचार करो तो एक इंद्री दूसरे इंद्री की सहायता नहीं कर सकती और बहुत क्षणिक है। विषय सुख तो इतने क्षणिक हैं, इतने क्षणिक हैं कि जिनके लिए व्यक्ति लालायित रहता है उन विषय सुख की हालत पर विचार नहीं करता कि अरे ये तो बहुत क्षणिक है। एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे, कुछ लोग कुछ महात्मा साथ में थे, तो प्यास लगी जोर से, पहाड़ी यात्रा थी, बहुत प्यास लगी। तो देखा दूर एक किलोमीटर लगभग ऊंचे पर चढ़ के देखा तो कुआं दिखाई दिया, तो एक किलोमीटर का चक्कर लगा करके वहां कुआं पर गए। बहुत प्यास थी सबको और हम भी आ गए थे, तो एक बाल्टी में रस्सी बंधी रखी थी, कुछ देखा सोना नहीं झट उसको फांस दिया। वो बाल्टी बड़ी थी, अब वो बाल्टी जब पानी से भर गई कुआं में तो एक साधु से नहीं खिंची, तो दूसरा लग गया, तीन लग गए, इतना भजन था उसमें, वास्तव में खींची, लेकिन उस बाल्टी में ऐसी जादू थी कि जैसी ऊपर आती जाती तैसी हल्की होती जाती। अब तीसरा भी हट गया, दूसरा भी हट गया, पहले ही हट गया, ऊपर आई तो हम भी यूं लगाए थे हमने कि सबसे पहले हम ही को मिल जाएगा, लेकिन उसमें बूंद पानी नहीं बचा, उसमें तो इतने छेद थे कि जब पानी निकल गया, भरा तो बहुत। मैंने कहा कि प्यारे यही है इंद्रियों का सुख। अब आप सोच गए समझ, आप लोग तो विज्ञ जन बैठे हैं, जरा विचार करना कि इतनी भारी बाल्टी भरी पानी से भरी जिससे तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन ऊपर आते आते सब खाली। वो तो आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना और इंद्रियां काम नहीं करती हैं और विषय सुख सामने दिखाई देते हैं, तो जैसे मलाईदार दूध धरा रहा है और बिल्ली से कहा डोंट टच प्लीज, और वो बेचारी बांध दी गई रस्सी में और वो मलाईदार दूध आगे रखा, यही दशा आदमी की होती है। हमने कई लोगों को देखा जिनको डायबिटीज है, मिठाई जब सामने आती है तो कहा अरे क्या बताएं, एक टुकड़ा तो लाई ले लें क्योंकि आगे गोली तो खानी है, जब गोली खानी है तो एक टुकड़ा ले ही लेना। तो इस प्रकार से व्यक्ति लालायित होता है। अरे जरा सोचो तो ये विषय सुख है कितने क्षणिक, क्षणिक हैं, नश्वर हैं, बुढ़ापे में सामने विषय रहेगा तुम्हारा, इंद्रियां शिथिल होने के कारण तुम्हारा जोर नहीं चल पाएगा। उन विषय सुखों को त्यागने के लिए कहा जा रहा। आज जो होड़ लगी है आप कई बार सुन भी चुके, इतनी होड़ लगी है कि किसी तरह से इंद्रियों की वासना को पूर्ति करने के लिए कोई भी प्रयत्न हो सका, जो प्रयत्न हो, न्याय से, अन्याय से, बेईमानी से, जैसे बने तैसे। ब्रग है ही नहीं, ब्रग तो सदाचार है ना, धर्म है। तो जीवन में जब ब्रग नहीं होता है, गाड़ी में जैसे ब्रग ना हो, सच्चे ब्रग ना हो, ब्रग हो लेकिन सच्चे ना हो, गड़बड़ हो, इसी तरह से भय के कारण या किसी दूसरे को देखने के कारण, लज्जा के कारण यदि व्यक्ति भयभीत होकर के अधर्म आचरण करता है और उससे बचता भी है तो उसका हेतु होता है भय लज्जा। इसीलिए कहा गया कि भाई जीवन में ये सोच लो, विचार लो, ये भोग रहेगा कितने दिन, ये कितने दिन का भोग है। तो जब इतना स्वल्प है तभी श्रुति ने कहा भूमा वही सुखम यद अल्पम तद दुखम, यद अल्पम तद मर्त्यम भूमा वही सुखम। सुख तो एकमात्र भूमा में है, आनंद तो एकमात्र उसी में है, और तो सब ये फीके हैं। तो फीके हैं तो फिर क्या करें, जैसे अभी बताया कि शरीर नश्वर है, क्षणिक है, थोड़ी देर का है, तब फिर कल से क्या मुंह में गोबर लपेट के आवे क्या? नहीं, गोबर लपेट के नहीं बताया जा रहा, केवल बुद्धि में ये बात आ जाए कि ये नश्वर है, क्षणिक है, बुद्धि में आ जाए, इसके प्रति महत्व बुद्धि हट जाए, यही बस वैराग्य, यही त्याग है। इसके प्रति जो हमारी बहुत महत्व बुद्धि है, इसको बचाना चाहते हैं, इसको जो पाने और बचाने में प्रयत्न है वो अपने आत्मज्ञान करने में बुद्धि को भ्रमित कर देता है। अब पाने और बचाने में किसको लगे हो, जो नश्वर है, जो क्षणिक है, थोड़ी देर में वो नष्ट हो जाएगा, उसको पाके करोगे क्या आखिर, उसको पाके कुछ कर भी नहीं सकते। और बचा के भी तो नहीं कर सकते। कितने दिन बचाओगे? आजकल हमने देखा डॉक्टर लोग आदमी को मरने नहीं देते, अस्पताल में पड़ा है, नाक में भी घुसेड़े हैं, यहां भी है और सब जगह ट्यूब लगाए और किसी तरह से ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। क्यों? वो बचाना चाहते हैं। अरे बाबा, शरीर को कितने देर बचाओगे? वो तो एक दिन जाएगा ही आखिर। तो क्या अस्पताल सब खाली पड़े जाए? अस्पताल में न ले जाए? ले जाओ, लेकिन ये दिमाग में रखो कि जिसको हम बचाना चाहते हैं वो बचेगा नहीं अंत तक। ये कैसे बच सकता? जो मर्त्य कहा गया है, मरणशील है, मरण धर्मा है, उसको कोई कैसे बचा सकता? अच्छा, जब बचाए नहीं सकते हो तो क्या करते हो? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कान में रुई ठूंस लो और आंखें बंद कर लो, देखा नहीं। अरे एक बार चिड़ियों में ने फैसला किया कि ऐसा करो, एक बिल्ली के घंटी लगा दो, जब आएगी तब हम लोगों को पता चल जाएगा। तो झट से चूहों ने कहा बिल में घुस जाएंगे, चिड़ियों ने कहा उड़ जाएंगी, लेकिन घंटी। अब ये हुआ कि घंटी बांधेगा कौन? बोले हाँ, ये तो ख्याल ही नहीं किया। घंटी तो टनटन होगी तो आवाज आएगी तो हम झटपट अपना बच जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि घंटी बांधेगा कौन? यदि आप पाने और बचाने में लगे हो, जुटे हो, ठीक है जुटे रहो, लेकिन कब तक बचाओगे प्यारे? ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। इसलिए विचार ये नहीं करना है, आप पाने और बचाने में जुटे हो, सारा जीवन उसी में चला जाता है। जिस करने में आप लगे हो उसको कहा गया न कर्मणा। फिर दार सुख में लगे सुतवित लोक ईशना तीनी, तीन ही ईशणा हैं। यह तो पुत्र की है, सो कह दिया न प्रजया ना धने न, और वित्त अलग कर दिया। सुतवित लोक ईशना तीनी, ये तीन ही ईशणा हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ये बताओ किसने इन ईषणा तीनों के द्वारा अपनी बुद्धि मलिन नहीं कर ली है? जिस बुद्धि में निहितम गुहायाम लिखा है उसी बुद्धि में वो विराजमान है, चम चम चमकता हुआ आत्मा उसी बुद्धि के द्वारा पहचाना जा सकता है। आपने देखा ना, जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से खुलता भी है। बुद्धि का अगर दुरुपयोग करोगे तो बंद भी सकते हो, आप बुद्धि का सदुपयोग करो आप लोगों जैसा तो खुल भी सकते हो, अपने को मुक्त कर सकते हो। नित मुक्त सच्चिदानंद तुम, नित मुक्त स यह ज्ञान कृपा से ही होता या, तुम नित बोध सच्चिदानंद तुम नित मुक्त यह ज्ञान कृपा से ही होता यह ज्ञान, जिससे अशांति मिट जाती है, जिससे यह ज्ञान कृपा से ही होता यह ज्ञान, अच्छे दिन बीते जाते हैं, अच्छे दिन गुरुजन सब विधि समझाते हैं, गुरुजन भोगस्थल से योगस्थल में भोग, प्रस्थान कृपा से ही होता प्रस्थान, जिससे अशांति मिट जाती है, जिससे सारी अतृप्ति खो जाती है, सारी वह नित्य प्राप्त है प्रीति सुधावने, पर पान कृपा से ही होता पर पान, पर पान कृपा से ही होता पर पान। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।